जब हम वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो वास्तव में
तो एक मिनट हरे कृष्ण सब अपना अपना मोबाइल देख तो बंद रखिए नहीं तो वाइब्रेशन में रखिए।
तो वैदिक शास्त्र बहुत विशाल है, जैसे कि हम साधारणतः रामायण महाभारत भगवद गीता भागवत इनके बारे में सुने हैं, पर चार वेद है, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, 18 प्रधान पुराण है, उसके विपरीत 18 उप पुराण है, और उसके विपरीत उसके अलावा और सैकड़ों स्थल पुराण है, जैसे जगन्नाथपुरी का स्थल पुराण है, अलग अलग पुण्य क्षेत्रों का स्थल पुराण है। और ऐसे देखा जाए तो सभी वैदिक शास्त्रों की अगर हम गणना करेंगे तो 100,000,000 श्लोक आते हैं, 100,000,000 श्लोक बहुत विशाल है। और इसको अगर पढ़ना है तो एक जिंदगी भी बहुत कम है, कई जिंदगियां लग जाएगी, और हमारे पास एक जिंदगी का भी कुछ हफ्ते में कुछ घंटे मिलते हैं हमको, तो इसीलिए हमारे पास समय बहुत कम है। इसीलिए जो आचार्यगण हैं वो ये शास्त्र और ज्ञान किस तरह से हम सार में और संक्षिप्त में, इन एसेंस एंड इन ब्रीफ, सार में हमें मिल जाएगी, सबसे महत्वपूर्ण चीजें मिल जाएगी, पर साथ साथ संक्षिप्त रूप में मिल जाएगी, इसके लिए आचार्य ने योजना बनाते हैं। पिछले प्रभुपाद जी ने जब अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ की स्थापना की तो पहले अमेरिका में जाने के बाद सबसे पहला ग्रंथ उन्होंने वहां पे अमेरिका में छापा हुआ था भगवदगीता, और सब भक्तों को उन्होंने भगवदगीता पढ़ने के आदेश दिए। तो जैसे क्रिश्चियन लोगों के लिए बाइबल है, मुस्लिम लोगों के लिए कुरान है, तो वैसे जो सनातन धर्म के पालन करने वाले लोग हैं जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है भगवदगीता। तो आध्यात्मिक जीवन में हमें दो चीजें जाननी है, साध्य और साधन। साध्य मतलब क्या प्राप्त करना है मुझे, और साधन मतलब कैसे प्राप्त करना है। ये साध्य और साधन वास्तव में हर एक क्षेत्र में होते हैं। अगर मैं बीमार हूं तो मेरा साध्य है स्वास्थ्य, और मेरा साधन है कोई डॉक्टर के पास जाकर उसका ट्रीटमेंट लेना। तो साध्य और साधन हर एक क्षेत्र में होते हैं, पर जब आध्यात्म में आते हैं तो साध्य क्या है ये भी लोगों को पता नहीं है। अभी हजारों की मात्रा में लोग पूजा कर रहे हैं ताकि भारत क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते, तो उनके लिए साध्य क्या है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतना, पर यह कोई जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है। धर्म का उद्देश्य क्या है, साध्य जो है वो है परम पुरुषोत्तम भगवान की भगवत प्राप्ति करना। भगवत प्राप्ति का मतलब नहीं कि हम भगवान बनते हैं, पर हम भगवान के धाम में लौट जाते हैं। और जो साधन है वह है भक्ति। तो साध्य है भगवान कृष्ण और साध्य है भक्ति। तो कैसे है, वैदिक शास्त्र बहुत विशाल है और अलग अलग स्तर के लोगों के लिए वे अलग अलग साध्य और अलग साधन बताते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि वैदिक शास्त्र में इतने सारे देवी देवताओं की पूजा बताई है, कभी गणेश की बताई है, कभी शिव जी की बताई है, कभी दुर्गा की बताई है। तो ये बहुत विरोधाभास है, इसमें ये परस्पर विरोधी है, तो वास्तव में ये विरोधी नहीं है, ये एक योजना है। क्या योजना है इसमें कि अगर कोई व्यक्ति तमोगुण के प्रभाव में बहुत ज्यादा है तो वो परम पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए बताया कि ठीक है अगर आप मांस खाना चाहते हो तो मांस खाओ, पर आप दुर्गा को काली को ही अर्पण करके खाओ। तो उससे क्या होता है, कम से कम उसका धर्म से संबंध हो गया है, थोड़ी पूजा कर रहा है, थोड़ा जप कर रहा है, मंदिर में जा रहा है, धर्म शुरू हो जाता है। मान लीजिए अगर कोई पिता है, उनके दो पुत्र है, एक पुत्र है जो हमेशा 40% मार पाता है, सिर्फ पास होता है थोड़ा बहुत, और दूसरा है जो नंबर बनाता है 80% मार्क्स आता है, तो आज दोनों के रिजल्ट आए और एक विद्यार्थी को, दोनों भाइयों को 60% मिला, 7% दोनों को मिला, तो जो 40% वाला भाई है उसको पिताजी बोलेंगे शाबाश ये तुम पे नाज है, और वही पिताजी दूसरे भाई के पास जाएगा बोले बदमाश क्या किया तुमने, पढ़ाई नहीं की, क्या है मैंने भी उतने ही मार्क्स लाए, उसने भी उतने ही मार्क्स लाए, आप क्यों मुझे शाबाश बदमाश बोले उसको शाबाश बोले, उसका स्तर अलग है। तो 40-60% यह है ऊपर जाना है, 80-60 है नीचे आना है। तो ठीक उस तरह से वैदिक शास्त्रों में ही काली पूजा का गुणगान किया है, काली के सामने जो बकरी को बलि चढ़ा उसका भी गुणगान है शास्त्रों में, पर अगर हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो कामै स्पैस्तै हृतज्ञान प्रबद्यन्ते अन्य देवता, कि जो काम वासना जिनकी बुद्धि को हरण कर लिया है वो कम बुद्धि वाले लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान बताते हैं। तो ये कैसे है कि अर्जुन जो है 80% के स्तर पर है, तो वो अगर देवी देवता की पूजा के स्तर पर आएंगे तो क्या होगा, वो नीचे आ रहे, इसीलिए बोलते हैं देवी देवता की पूजा कौन करते हैं, कम बुद्धि वाले लोग। तो जो लोग नास्तिक है वो अगर देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं तो क्या है, अच्छा है, वो 40-60% पर आ रहे हैं। तो इसीलिए वैदिक शास्त्रों में अलग अलग साध्य है, अलग अलग साधन है, अलग अलग साध्य है, अलग अलग साधन है, अलग अलग स्तर के लोगों के लिए। तो इसका फायदा क्या है कि जो व्यक्ति जिस स्तर पे है उस स्तर पे वो थोड़ा सा आगे प्रगति कर सकता है, जैसे जो निर्विशेष निराकारवाद है उसका भी वर्णन आता है शास्त्रों में। क्यों आता है कि कई बार जो भौतिक जगत में लोग होते हैं वे संबंधों से बहुत हताश हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, इस संबंध में झगड़ा हो जाता है, पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है, पिता पुत्र में झगड़ा होता है, दफ्तर में बॉस के साथ झगड़ा होता है, ऐसे संबंध है, रिश्ते नाते हैं, ये बहुत परेशान करते हैं, मुझे कोई रिश्ते नहीं चाहिए, कोई नाते नहीं चाहिए, सिर्फ शांति चाहिए, शांति शांति शांति। साधारणतः जब यज्ञ होते तो 3 बार बोलते हैं शांति, क्यों 3 बार बोलते हैं, क्योंकि ये 3 क्लेश हमको अशांत करते रहते हैं, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, तो तीनों को एक आध्यात्मिक क्लेश शांति, आदि भौतिक क्लेश शांति, आदि दैविक क्लेश शांति को भाव होता है। तो कई बार लोग सोचते हैं कि हमको शांति शांति चाहिए, तो ऐसे लोगों को आप बोलेंगे कि आप भगवत धाम जाओगे तो हमें भगवान से संबंध जोड़ना है, भगवान के भक्तों से संबंध जोड़ना है, अरे बाप रे वहां पे परेशानी आ जाएगी संबंध में, क्या परेशानी आएगी, संबंध नहीं चाहिए मुझे। तो अगर उनको बोलेंगे आपको संबंध जोड़ना है तो बोलेंगे नहीं चाहिए मुझे संबंध, छोड़ दो। तो फिर उनके लिए बताए निराकार निर्विशेष ब्रह्म है, वहां पर जाओगे आपको शांति प्राप्त हो, ये तो अक्षर अक्षर निर्देश अव्यक्तम परिभाषित है, सर्वत्र चिंतन कूटस्थम चिरंजीवम, कोई गुण नहीं है, कोई कार्य नहीं है, कोई रिश्ते नहीं है, शांति शांति शांति। तो ऐसे लोग भी आध्यात्मिक जो राकर चले जाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के साध्य है, जैसे आज जो निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो जाते हैं उनके लिए क्या है, ज्ञान मार्ग है, पर जो भगवान के धाम में लौट जाते हैं उनके लिए भक्ति मार्ग है। तो इस तरह से अलग अलग साध्य है, अलग अलग साधन है, और इसका फायदा क्या है कि अलग अलग प्रकार के लोग धीरे धीरे प्रगति कर सकते हैं। पर इससे समस्या क्या हो सकती है कि लोग मोह में पड़ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या अंतिम उद्देश्य है, क्या मार्ग है। तो इसीलिए भगवान भगवदगीता में सबको स्पष्ट करते भगवान भगवदगीता में कि सब अनेक मार्ग है, पर अंत में भगवान क्या बोलते हैं 18वें अध्याय के 6वें श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जो कोई स्वार्थ ब्राह्मण है वो भगवदगीता साइड करते हैं, तो उनका एक साइडिशन का रिकॉर्डिंग जो भक्त दिखा रहे थे, उन्होंने इस श्लोक को क्या कर दिया, सर्व अधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। वो श्लोक में बदल दिया क्यों? उनको समझ ही जाता है कि धर्म को कैसे त्याग कर सकते, कुछ गलत है। भगवान धर्म का त्याग करने को नहीं बोल सकते, पर कौन से धर्म का त्याग करने को बोल रहे? नीचे के स्तर के धर्म, ताकि सर्वोच्च धर्म है उसको स्वीकार कर सके। तो इस तरह से भगवद्गीता में जो सात साधन है, क्या मार्ग है? ज्ञान है, योग है, कर्म है, ये सब मार्ग है। तो सर्वश्रेष्ठ क्या है? भगवान ये सब छोड़ दो आप, और आप सिर्फ मेरी भक्ति करो। नौ ग्यारहवें अध्याय के 53-54 श्लोक में स्पष्ट रूप से भगवान बोलते हैं, ना हम वेदई न तपसा न दाने न चैचया शक्यं विधौ द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्या अहमेवं विधौ अर्जुन क्या तुम द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रविष्टं च परन्तप। तो कहते हैं ना हम वेदई न तपसा न दाने न चैचया, ज्ञान तप इन जब इन सबसे आपको मेरी प्राप्ति नहीं होगी, सिर्फ भक्ति से प्राप्ति होगी। तो इस तरह से जो साधन है बिल्कुल स्पष्ट कर दे क्या है, आपको भक्ति ही करनी है। और उसके साथ साथ जो साध्य है वो क्या है? भगवान बोलते मत्त परतरम नान्य किंचित अस्ति, मुझसे और बड़ा कोई स्रोत है नहीं, कोई तत्व नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभो, बार बार भगवान बता रहे हैं कि जो परम पुरुषोत्तम है वो मैं ही हूँ, और आपकी परम गति जो मैं ही हूँ। तो इस तरह से सिद्धांतिक स्तर पे भगवद्गीता बहुत स्पष्टीकरण कर देती है, इसीलिए भगवद्गीता बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो प्रज्ञान जो है अगर हम भगवद्गीता पढ़ते हैं तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो भगवद्गीता है भक्ति शास्त्र में जो प्रधान कार्य अभी सबसे अधिक समझ जाता है भगवद्गीता लेती है, क्योंकि उससे सब कुछ जो मूल सिद्धांत है वो स्पष्ट हो जाते हैं। साध्य क्या है, साधन क्या है, और फिर यह है भगवद्गीता। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो उपनिषद, ईशो उपनिषद हम पढ़ते हैं। तो पारंपरिक पद्धति से वैदिक शास्त्रों में दो विभाजन होते हैं, श्रुति और स्मृति। तो श्रुति यानी जो श्रवण किया है, स्मृति यानी जो स्मरण किया है। तो इनमें फर्क क्या है कि ये इसकी तुलना की जाती है कि कोई पारंपरिक परिवार में कोई माँ अपने बच्चे को सिखाती है, तो माँ सिखाती है और फिर चली जाती है, और फिर वो बच्चे को बार बार रिवाइज करवाना है, याद करवाना है उसको। तो फिर उसकी बड़ी बहन है, उसकी बड़ी बोलती है माँ ने क्या याद है क्या ऐसे बोला था, फिर ये बोला था, तो बार बार उसको दोहराती है, समझाती है, उसको याद दिलाती है। तो श्रुति जो है वो माँ के समान है, और स्मृति जो है वो बड़ी बहन के समान है। दोनों का एक ही संदेश है, पर श्रुति जो है एक बार बोलती है, पर स्मृति बार बार बोल के दोहरा कर विस्तारित रूप समझाती है। तो श्रुति जो है वेद और उपनिषद। तो ये कैसे है? जो भगवान ने बताया है वही वचन है, और स्मृति जो है वो जो बड़े महान ऋषि मुनि है उन्होंने भगवान के वचन सुने, उन पे मनन किया है, और उनका विस्तारित रूप से विश्लेषण किया है हमारे समझ के। तो जैसे अगर कोई वकील है, वकील को कोर्ट केस करनी है, उसके एक कोर्ट केस करनी है, तो कोर्ट केस वो कैसे करता है? पहले बोलता है कि दफा 165 के अनुसार ये ऐसे ऐसे, इसीलिए ये व्यक्ति गुनहगार नहीं है। तो एक तो क्या है, वो जो लॉ कोड्स है, जो कानून है उसके बारे में बोलता है, और कानून नहीं बोलता है, उसके साथ साथ वो पूर्व जो केस हुए हैं थी 1981 में चैटर्जी वर्सेस बैनर्जी की जो केस थी कलकत्ता हाई कोर्ट में, उसमें ये परिस्थिति में ये डिसीजन दिया था, इसीलिए इस परिस्थिति में आपको ये डिसीजन देना चाहिए। तो जो लॉ केस होता है, जो वकील होता है, दो चीजों के अनुसार अपना केस प्रस्तावित करता है, एक है कि कानून और दूसरे है कि पूर्व जो केस हुए। तो उसी तरह से श्रुति है वो कानून है, और स्मृति जो है वो पूर्व इतिहास है, पूर्व केस है। तो श्रुति में से सूत्र जैसे बताया है, तो इस तरह से ये दोनों साथ मिला के क्या होता है कि सिद्धांत एक ही सिद्धांत प्रस्तावित करते हैं। तो यहोवा जी ने श्रुतियों में से क्या लिया है, ईशो पिचर लिया है हमारे, और स्मृति में से भगवद्गीता ली है। भगवद्गीता ये महाभारत में आती है, तो इसीलिए उसको स्मृति मानते हैं। पर एक तरह से या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा, शंकराचार्य जी गीता महात्म्य में बताते हैं कि जो पद्मनाभ जो है भगवान कृष्ण, उन्होंने स्वयं इसको बोला है, तो फिर और आपको कोई शास्त्र की क्या जरूरत है। तो भगवद्गीता को आप श्रुति भी कह सकते हैं, पर हम श्रुति मान लें तो भी गलत नहीं है। तो भगवद्गीता श्रुति में है, श्रुति में उपनिषद है। तो जो उपनिषद है, कई बार ऐसे लगता है, लोगों को लगता है कि ये सब निर्विशेष निराकार ब्रह्म के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो हाँ, सत्य है, वो वर्णन करते हैं, पर सिर्फ उनके बारे में ही वर्णन नहीं करते, वो साकार के बारे में वर्णन करते हैं। जैसे एक क्रूड बहुत ही सरल उदाहरण देने का बोले, आप मान लीजिए सत्संग कार्यक्रम के याद है, और फिर कार्यक्रम में आने के बाद आप बोलते हैं कि घर में जाके आप बोलते हैं कि आज कार्यक्रम में कोई भी शर्ट पैंट पहन के नहीं आया। तो क्या उसका मतलब है कोई सब बिना वस्त्र के आए थे? नहीं। उसका क्या मतलब है कि वो सब धोती कुर्ता पहन के आए थे। तो अगर हम एक ही पार्ट लेते हैं तो फिर क्या होगा, वो गलत हो जाता है। तो इसीलिए कई लोग इसे निर्गुण निराकार बोलते हैं ब्रह्म के बारे में, वो बताते हैं, उसके बाद सगुण साकार भी बोलते हैं। अपानी पादो जवनो ग्रहिता पश्यत्य चक्षो सुनोत्य करणः, चेतन शतक मुझे बताते हैं कि अपानी पादो वो परम सत्य के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, जवनो ग्रहिता, पर अगर आप उनको भोगार्पण करते हैं तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, कहीं भी आप उनको भोगार्पण करते हैं वो तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तत्वान्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तत्र सर्वस्यास्य बाह्यतः। ईशोपनिषद में बता रहे हैं कि वो जो परम सत्य है पांचवें श्लोक में, तदेजति वो चलते हैं चलते नहीं है, वो दूर है तद्दूर पास में है, वो सबके अंदर है सबके बाहर भी है। ऐसे विरोधाभास है तो लोग उन्हें क्या है तो समझ में नहीं आ रहा है। पर ये विरोधाभास का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है, उससे हमारी जो बुद्धि है उसको ऊपर के स्तर पर ले जाती है। मान लीजिए तो कोई लोग कहे करे ये वक्त चलता भी है चलता भी नहीं है, जैसे क्या अर्थ ही नहीं, मूर्ख लोगों ने उपनिषद बनाया कुछ अर्थ नहीं, ऐसे नहीं है, बहुत बुद्धिमान लोग थे। तो अगर दो विरुद्ध वचन है, दो विरुद्ध वाक्य है, तो उनका संगम कैसे करना, ये एक कला है, और उस कला को अर्थापत्ति कहते हैं। अर्थापत्ति मतलब दो विरुद्ध अर्थ के जो वचन है वाक्य है उनका संगम कैसे करवाना। जैसे मान लीजिए अभी कोई व्यक्ति है, रवि दिन भर कुछ भी खाता नहीं है, एक वाक्य है रवि दिन भर कुछ भी खाता नहीं है, दूसरा वाक्य है रवि का वजन बढ़ रहा है, ये कैसे संभव हो सकता है? तो अगर दिन भर खा नहीं रहा है तो उसका वजन बढ़ नहीं सकता है। तो दो विरुद्धाभास वाक्य जीव गोस्वामी पाल उनके सर्वसंवादिनी टीका में ऐसे उदाहरण इस प्रकार के उदाहरण देते हैं। वो बोलते हैं इनको सुलझाना है तो हमें अर्थापत्ति करना। अर्थापत्ति क्या है? रवि रात को चुपके खाता है। रवि दिन भर कुछ नहीं खा रहा है, रवि का वजन बढ़ रहा है। तो अगर दोनों वाक्य सत्य है तो सत्य होने के लिए हमको कोई तीसरा वाक्य का प्रस्ताव करना पड़ेगा जो इन दोनों को सत्य रख सके। वो क्या है? रवि रात को चुपके खा रहा है। तो जो शास्त्र में कहते परम सत्य निर्गुण निराकार है और परम सत्य सगुण साकार है, ये दोनों वाक्य है। परम सत्य चलते हैं, परम सत्य चलते भी नहीं है, और दोनों प्रकार के वाक्य है तो उनका हम संगम संयोग कैसे करा सकते। तो आचार्य बताते हैं कैसे करा सकते कि परम सत्य के कोई भौतिक पैर नहीं है, उनके आध्यात्मिक पैर, और जब वो चलते हैं, हम चलते हैं हमारे भौतिक पैरों से चलते हैं, तो वो चलते नहीं है, मतलब हमारे जैसे भौतिक पैर चलते नहीं, पर वो चलते हैं, तो कैसे चलते हैं? आध्यात्मिक पैर चलते हैं। तो इसीलिए ये जो इस प्रकार के उपनिषद है, उपनिषदों में ये परम सत्य को निर्विशेष निराकार बताया है और सगुण साकार भी बताया है। तो ये जो है उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ होते हैं, तो इसलिए प्रभुपाद जी ने ये उपनिषदों में से बहुत ही प्रधान मत उपनिषद जो है ईश्वर उपनिषद उसको लिया है और उसको बहुत ही संयोजित पद्धति से उस पर तात्पर्य दिया है। तो मुकुटिक उपनिषद नाम का एक उपनिषद है, उसने 108 उपनिषदों की गणना आती है, तो उसमें 10 उपनिषद प्रधान है और 10 उपनिषदों में ईश्वर उपनिषद प्रधान है, तो इसलिए प्रभुपाद जी ने ईश्वर उपनिषद भी लिया है। तो अभी ये दो ग्रंथ है, ये श्रुति और स्मृति, जो श्रुति में से कौन सा आया? गीता। श्रुति में से कौन सा आया? ईश्वर। इस तरह से ये दोनों ग्रंथों से महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रभुपाद जी ने हमको दिए है भक्ति शास्त्र में। और फिर जो शास्त्र है ये केवल पढ़ने के लिए और जानने के लिए नहीं है, ये शास्त्र हमारे जीवन में उतारने के लिए, जीवन में उतार के जीवन परिवर्तन करने के लिए। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अभी हम कोई रसोई में कुछ पका रहे हैं तो उसके लिए रेसिपी लगता है। रेसिपी को हिंदी में क्या बोलते हैं? पकाने की विधि जो है, रेसिपी आप समझ रहे हैं, तो रेसिपी लगता है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति मालपुआ बनाना चाहता है, तो मालपुआ बनाने के लिए रेसिपी सीख लेता है और फिर रेसिपी सीख के रोज सुबह शाम रेसिपी बोलते रहता है, स्मरण करके बोलते रहता है। तो क्या बोलने से उसको मालपुआ का स्वाद मिलने वाला है? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो एक और से अगर वो रेसिपी जो रेसिपी है वो याद नहीं करेगा तो मालपुआ बनाना चाहेगा तो कुछ और पुआ बन जाएगा, वो मालपुआ बनेगा नहीं। पर सिर्फ रेसिपी जानने से वो व्यंजन, वो जो खाद्य पदार्थ है बनता नहीं है। तो शास्त्र जो है वो रेसिपी के समान है, और हमें क्या पकाना है? हमारे चेतना को पकाना है, हमारे हृदय को पकाना है, जिससे कि जो कृष्ण भक्ति का रस है वो उसमें उत्पन्न हो। तो शास्त्र क्या है? वो एक रेसिपी के समान है, ये हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे हमारे चेतना को परिवर्तित करना है। तो अगर जैसे बताया था कि अगर शास्त्र है नहीं तो अगर मैं सोचूं अगर मुझे भक्ति करनी है, मुझे बाकी सब चीजें छोड़नी है, कोई चीजें छोड़नी है, कभी कभी लोग बोलते हैं कोई सिगरेट पी रहा है, कोई दारू पी रहा है और सोचा कि मैं छोड़ना चाहता हूं, मैं क्या मेरी इच्छा शक्ति से छोड़ लूंगा? तो अभी इच्छा शक्ति जरूरी है, पर इच्छा शक्ति से ही छोड़ना बड़ा मुश्किल है। इच्छा शक्ति से ही कोई बुरी आदत को छोड़ना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जो शास्त्र बताते हैं कि जो बुरी आदतें हैं वो एक बीमारी के समान है, एक मानसिक बीमारी के समान है। तो अगर कोई बीमारी है, मान लीजिए किसी को लूज मोशन हो गया और वो बोलता है मैं मेरी इच्छा शक्ति से लूज मोशन ठीक कर लूंगा, जाना होगा मैं जाऊंगा नहीं, कुछ नहीं होगा। तो इच्छा शक्ति से सिर्फ वो तड़पाएगा खुद को। तो कई बार हम जो नए लोग आ रहे हैं भक्ति में, और उनको अगर नियम बनाते चार कैसे जीते कैसे, हाँ कुछ भोग नहीं करते, कुछ आना नहीं था, कुछ भी ना, उनको क्या लगता है? सिर्फ तड़पा रहे हैं खुद। तो क्या है, उनको विधि पता नहीं है। तो अगर किसी को लूज मोशन हो गया है तो इच्छा शक्ति जरूरी है, पर इच्छा शक्ति क्या है? सिर्फ वो शरीर को दबोचने में नहीं है, शक्ति क्या है? डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लिया, ये दवाई लो और फिर एक आओ, और ये और आप डॉक्टर के साथ साथ ये बोलेगी क्या ये अभी कुछ जो बहुत ही हेवी प्रसादन है वो आप मत खाओ, कुछ सूप पियो, कुछ सब लाइट प्रसादन लो आप, तो खिचड़ी खाओ। तो क्या है, इच्छा शक्ति किसने इस्तेमाल करनी है? डॉक्टर के विधि के वो पालन करने के लिए करनी है। डॉक्टर के विधि के बिना अगर कोई इच्छा शक्ति इस्तेमाल करता है तो क्या होगा? सिर्फ खुद को तड़पाएगा और ठीक नहीं हो पाएगा। तो उसी तरह से जो शास्त्र है वो बता था, एक उदाहरण है कि रेसिपी, दूसरा उदाहरण है डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जो होता है शास्त्र वो है कि डॉक्टर बोलते हैं कि आप ऐसे 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 करो और फिर उसके अनुसार हमको जीवन जीना है। अगर कोई डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेता है पर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को अपने जीवन में उतारता नहीं है तो फिर क्या होगा? प्रेस्क्रिप्शन का कुछ फायदा नहीं है। अगर हम डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर से पास जाते हैं, डॉक्टर सुनते हैं कि अच्छा ये आपको ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ है, और फिर आ जाते हैं थैंक यू डॉक्टर, और फिर बाद में आते हैं अगले हफ्ते दवाई लिया, नहीं दवाई नहीं लिया तो मैं आपसे मिलने आ गया, मिलने आने का क्या फायदा है, आया तो अच्छा है पर दवाई लेने से ही परिवर्तन होगा। तो ठीक उसी तरह से शास्त्र जो है उसको जीवन में जब उतारते हैं तो हमको असली फायदा होता है। तो इसीलिए जैसे अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं दो चीजें होती है, एक है डायग्नोसिस और दूसरा है प्रेस्क्रिप्शन। डायग्नोसिस मतलब वो बोलते हैं कि आपको क्या समस्या है, तो पेट में बहुत जलन होती है, क्यों हो रही है, आपकी समस्या है कि आपको एसिडिटी हो रही है, तो ये डॉक्टर बोलते हैं बीमारी क्या है, और फिर दूसरा बोलते हैं दवाई क्या। तो जो ये शास्त्र श्रुति और स्मृति ये क्या है, ये हमको बताते हैं बीमारी क्या है, और फिर बाकी दो ग्रंथ है उपदेशामृत और भक्तिसामृत, ये हमको बताते हैं दवाई कैसे लेनी है। ये दवाई कैसे लेनी है तो कुछ तौर पे भगवद्गीता में बताया है पर इतना स्पष्ट रूप से नहीं बताया है, स्पष्ट रूप से ये उपदेशामृत और भक्तिसामृत में बताया है। तो मतलब ये जो दो ग्रंथ क्या कर रहे हैं, बीमारी क्या है वो बता रहे हैं, और बीमारी के लिए दवाई क्या है, दवाई कैसे लेनी है, उससे कैसे हम धीरे धीरे ठीक हो गए, वो सब उपदेशामृत और भक्तिसामृत में बताया है। तो ये दोनों ग्रंथ है ये वैदिक शास्त्रों पर ही आधारित है, पर ये विशेष तरह से कलयुग में हम सबको आसानी से हमारे जीवन में कैसे उतार सकते हैं वो बताते हैं। जैसे जो डॉक्टर जो हमको प्रेस्क्रिप्शन देता है, दवाई देता है, वो जो दवाई की किताबें हैं, मेडिसिन की किताबें, उसके आधार पर ही देता है। पर डॉक्टर अगर हमको जुकाम हो गया और भी डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर के पास एक 5,000 रुपये उसकी बड़ी किताब होगी जुकाम पे, और उसके पढ़ा ये किताब पढ़ लो और देखो क्या करना है, पाँच हज़ार रुपये कौन पड़ेगा और क्या समझेगा और क्या करना है उसमें। डॉक्टर क्या करते हैं, वो ज्ञान लेता है पर उसमें से हमको एक सिंपल होता है कि ये दवाई सुबह लो, ये आप ऐसे करो ऐसे करो आप ठीक हो जाओ। फिर उस तरह से लोग उस समय पास क्या करते हैं, नाना शास्त्र विचार सद्धर्म संस्थापक, वो अनेक शास्त्रों का अध्ययन करके सब धर्म जो असली धर्म क्या है संस्थापक संस्थापन करते, क्यों लोकानां हितकारिणं, सब लोगों का हित करने के लिए। तो इसलिए ये जो ग्रंथ है उपदेशामृत और भक्तिसामृत भी बहुत प्रैक्टिकल है। तो इन दोनों में से जो उपदेशामृत है वो संक्षिप्त ग्रंथ है, और वो जो उसके श्लोक है वो डायरेक्ट हमको बताते हैं कि ये चीज आपको नहीं करनी चाहिए, प्यार प्रयास की मांग ये नहीं करना चाहिए, असत अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, और डायरेक्टली बताते ये करो ये करो ये करो, और इस तरह से आसानी से हमको आदेश देते हैं, और आदेश को हम हमारे जीवन में उतारते हैं तो हम परिवर्तन देख सकते हैं। और इसके साथ जो भक्तिसामृत सिंधु है ये बहुत विशेष ग्रंथ है, अनेक वैष्णव संप्रदाय भी है उनमें से जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है वो बहुत विशेष है, हम जो इस्कॉन जो है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में आता है। तो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की विशेषता क्या है कि जो रस का ज्ञान है ना वो श्री संप्रदाय माधव संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय कहीं भी नहीं है, इतना अच्छी तरह से हमारे गौड़ीय आचार्यों ने दिया है। तो ये रस के बारे में उल्लेख श्री भागवतम में आता है, श्री भागवतम के पहले अध्याय के पहले स्कंध के पहले अध्याय के तीसरे श्लोक में जिस बताया गया है कि भागवतम कौन चख सकता है, निगम कल्पतरो दलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव्य संयुक्त पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर अहो रसिका भूभाव का, रसिका जो रसिक लोग हैं वो इसको चख सकते हैं, और रसमालयम कि जो है रस से भरा हुआ है। तो शायद भक्ति में आने के पहले हमने रस शब्द कहाँ सुना होगा, आम रस गन्ना रस उतना ही सुना होगा, उसके अलावा ये रस शब्द का हमें ज्यादा परिचय नहीं था। पर ये भक्ति रस क्या है, ये रस शब्द के कई अर्थ है, रस का एक अर्थ है कि संबंध, शांत रस दास्य रस वात्सल्य रस, तो यशोदामाई का रस कौन सा है, वात्सल्य रस। तो रस का एक अर्थ है संबंध, और वो संबंध में प्रधान भावना क्या है कि हाँ मुझे मेरे कान्हा का पालन करना है, तो जब यशोदामाई की इच्छा होती है कि मेरे कान्हा का पालन करना है मुझे, तो वो देखते थे अच्छा अच्छा उसको खाने को मिलना चाहिए, और खाने को मिलना चाहिए साथ साथ वो चोरी नहीं करना चाहिए। तो फिर वो क्या करते हैं, सब लिख के रख जाती है, कृष्ण चाहते हैं कि नफरत करना चाहते हैं, तो कृष्ण क्या करते हैं, मुकुंदम मनसा माता यशोदा बड़े बड़े मटकों में पयो दधी, वो दही और दूध रखती है, व्रजेश्वरी यशोदा माई है, वो घर से बाहर चली जाती है कुछ काम सेवा के लिए, और तभी कृष्ण सोए हुए, कृष्ण तो जैसे देखते माँ चले चली गई है, उठ जाते हैं, जितना मैंने खा लेते हैं, और फिर सर कपटे न सुप्तम, अपने नाटक करते कि सो गया, फिर माँ यशोदा माई आती है वापस, किसने खाया ये, अरे कृष्ण तो सोए हुए हैं, तो कृष्ण इस तरह नाटक करते हैं, तो इस तरह से क्या होता है, माँ यशोदा उनके मात्र वात्सल्य भाव में अलग अलग प्रकार की भावनाएं महसूस करती है, तो यहाँ पे आश्चर्य होता है, कभी भय होता है, तृणावर का भगवान कृष्ण उठा के ले जाता है, तो फिर भयभीत हो जाती है, तो भय विभत्स भयानक आश्चर्य अद्भुत, ये सब वात्सल्य रस में अलग अलग भावनाएं, तो ये सब भावनाएं भी भक्त अनुभव करते हैं, तो जो है ये अलग अलग भावनाएं किस तरह से भक्त किस स्तर पे अनुभव करते हैं, इसका वर्णन भक्त सामृत सिंधु में आता है, तो भक्त सामृत सिंधु जैसे बता रहा था कि दूसरे संप्रदायों में भी भक्त रस अनुभव करते हैं, पर रस ज्ञान का जो विश्लेषण है वो रूप गोस्वामी ने पहली बार किया, और रूप गोस्वामी ने भक्त सामृत सिंधु ग्रंथ लिखा है, उसका प्रभुपाद जी ने समय स्टडी किया, और उसको अनेक प्रभु डिवोशन प्रभुपाद जी ने कहा है, तो ये जो ग्रंथ है ये न केवल भक्ति के रस का विश्लेषण करता है, पर अलग अलग भक्ति की जो विधि विधान है उनका शास्त्रों में कैसे आधार है वो बताता है, जैसे अगर हम भगवान का दर्शन करना है तो भगवान के दर्शन करने की महिमा कहीं स्कंद पुराण में बताई है, कहीं पद्म पुराण में बताई है, कहीं मार्कंडेय पुराण में बताई, तो ऐसे सब श्लोकों में ढूंढे हैं बताई गई है, ये सब इसकी महिमा जरूर करो, क्योंकि क्या होता है मायावादी लोग कहते हैं कि ये तो बहुत कम बुद्धि वाले लोगों के लिए दर्शन करते हैं, आपको चिंतन करना चाहिए, पर नहीं, ये बहुत महान कार्य है, चरणामृत ग्रहण करना, दर्शन करना, भगवान को अर्पण किया फूल उसका पास में तो उसको सुगंध लेना, तो ये सब इन सब की जो अलग अलग शास्त्रों में मिली होता है उस सबका वर्णन करते हैं, और फिर इन सब भक्ति के कार्यों को करने के द्वारा कैसे हम भक्ति की भावनाएं उत्पन्न होती है हमारे दिल में, कैसे हम अनुभव कर सकते हैं भावनाएं, उसका वर्णन है, तो जो आधुनिक समाज है आजकल का समाज है उसकी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी, उसकी बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या है कि आधुनिक समाज में भावना और वासना इनका कोई पद भक्त समझते नहीं है, भावना और वासना इनमें फर्क क्या है कि अगर कोई लोग सोचते हैं कि मुझे सुखी होना है, तो अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा था तो लोग इतना पागल हो रहे थे, और ये कैसे कह सकते कि सुखी थे, वो अभी फटाखे बजा रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, पर ये सुख क्या है, ये बहुत बाह्य सुख है, ऐसे कोई छोटा वादा होगा उसके बाद खेलना है तो क्या करते हैं, कोई रिश्तेदार आकर उसके पेट में गुदगुली करने लगते हैं, और गुदगुली करने लगता है तो अगर हंसते हैं तो भी क्या हो, सच में जो खुश है, अगर गुदगुली करने से खुशी आती है तो फिर हम सब अपना खुद का एक पर्सनल गुदगुली मशीन बना लेंगे और गुदगुली करते रहेंगे, जिंदगी में खुशी रहेंगे, वो जो बहाई है उसमें वो क्या है, एक शारीरिक स्तर पे एक प्रकार का संवेदना करने से एक प्रकार की प्रतिक्रिया आती है, पर उसमें कोई सुख नहीं, तो उसी तरह से जो भौतिक काम वासना है, भौतिक लोभ है, ये सब है, उससे एक प्रकार का आनंद मिलता है, और बहुत आत्मा के लिए बहुत बाह्य है, बाह्य के बाहर की एक संवेदना है, उससे एक प्रतिक्रिया है, वास्तव में आत्मा है उसको कोई परिणाम नहीं होता, उसका जो क्रिकेट वगैरह उसमें लोगों को तगड़ा आनंद हो रहा है, पर क्यों बाह्य है, बहुत सुपरफिशियल है, बहुत ही नगण्य सुख है वास्तव में, पर जो हृदय किस तरह की भावनाएं है वो आत्मा किस तरह की भावना है वो भक्ति के द्वारा उत्पन्न होती है, तो शारीरिक जो शरीर से भाव जो संवेदना शरीर से मन की हो जाती है, फिर मन को विचलित करती है, उसको वासना कहते हैं। और जो आत्मा से मन की ओर आती है उसको भावना कहते हैं। ये शरीर से मन की ओर जाती है उसको क्या कहते हैं? वासना। तो जब एक पुरुष और स्त्री के बीच में आकर्षण होता है तो वो क्या है? शरीर के स्तर पे सर से मन के स्तर पे जा रहा है, तो उसमें आत्मा को कुछ लेना है ही नहीं, तो वो वासना है। और जो आत्मा से मन के स्तर पे आता है वो क्या है? भावना है। तो इसीलिए कृष्ण भावना अमृत संग, कृष्ण भावना हमें उत्पन्न करनी है। ये कृष्ण भावना है, ये भक्ति की विधि विधि से धीरे धीरे हमें और बढ़ते जाएंगे। और जब एक में आ गया वर्णा है कि एक सर आता है स्थाई भावना। स्थाई भाव मतलब भक्त को सदैव भक्ति में आनंद मिलता है, और जब इस तरह से भक्ति में सदैव आनंद मिलता है तो फिर वो सारे दूसरी चीजों से विरक्त हो जाता है, और वो बहुत तेजी से और स्थिरता से प्रगति करते हैं, तो भगवत धाम लौट सकता है। तो प्रभुपाद जी बोलते थे ये भक्ति साम सिंधु ये भक्ति के विज्ञान का ग्रंथ है, द साइंस ऑफ डिवोशन। भक्ति कैसे विज्ञान है, कैसे वैज्ञानिक रूप से प्रगति होती है, उसका वर्णन इस भक्ति साम सिंधु में किया गया है। तो इस तरह से सारे वैदिक शास्त्रों का सार तत्व ज्ञान के स्तर पर, और उसका सार प्रायोगिक स्तर पर हमको इन चार ग्रंथों में मिलता है। कभी कभी लोग बोलते हैं मुझे आपके पास इस्कॉन में ओरिजिनल वेद है, ओरिजिनल ऋग्वेद देखना है, तो ओरिजिनल यजुर्वेद देखना है क्या आपके पास? पहले से कौतुक करते लोग, तो एक अच्छा कौतूहल है कि वो कोई फिल्मी मैगजीन वगैरह उसके बारे में कौतूहल नहीं कर रहे, सब तो बड़ी कुतूहल है। तो फिर भी क्या है कि ये जो कुतूहल है इससे वास्तव में क्या होता है, जो हमारे लिए प्रैक्टिकल है वो हम प्राप्त नहीं कर पाते। जैसे फणस को हिंदी में क्या बोलते हैं अपन जानते हैं, उसको बहुत काटना पड़ता है, कटहल, कटहल उसको बहुत उसका बहुत चिकट होता है, काटना पड़ता है, वही ना काटे होते जैकफ्रूट, जैकफ्रूट। ओके, तो एक बार एक व्यक्ति ने सुना कि जैकफ्रूट बड़ा स्वादिष्ट होता है, तो उसका एक मित्र सागर के तट पे लगा रखना गए, उसको मैं वहाँ पे जा उस इलाके में जाके वो खा लूँगा, उसको बोला सोलह मैं आपके यहाँ पे आ रहा हूँ और मुझे ये कटहल कटहल ना कटहल खाना है, जैकफ्रूट खाना है, ठीक है जरूर मैं तुम्हारे लिए बना लूँगा। तो उसने फिर क्या किया, अभी पेड़ पे चढ़ा, फिर सारे काटे सब तोड़ के निकाले, और फिर काटा सब जो जो चिकना और चिकट होता है निकाल दिया, और अच्छा प्लेट में बना के रख दिया। अब उसका मित्र आया, मुझे मुझे आप दो, मुझे बड़ा उत्साह है कटहल खाना है, मुझे ये मिलेगा और मुझे ओरिजिनल कटहल चाहिए, बड़ा फल होता है प्लेट में होता है, मुझे वो चाहिए। हाँ ये वही है, नहीं नहीं मुझे कटहल चाहिए, हाँ ये वही है, नहीं नहीं मुझे वो कटहल चाहिए, अब खाओ यही है। तो जैसे लोग बोलते हैं मुझे ओरिजिनल ऋग्वेद चाहिए, नहीं ये भगवत का यथारूप वही है, नहीं नहीं ओरिजिनल ऋग्वेद चाहिए। तो वास्तव में उस मित्र ने सारी मेहनत की उसके लिए, सारा वो जो परेशानी का कार्य था वो सब करके बड़ा आसान उसको दे दिया। जब प्रभुपाद जी ने अपने रात की नींद को त्याग करके बहुत ही सरल रूप से हमको सिद्धांत दिया, पर कभी कभी लोग उपनिषद चाहिए, उपनिषद लोग पहले समझेगा क्या, और समझेगा तभी तो उसमें से जीवन में अमल क्या करोगे। इसीलिए जो भी वैदिक शास्त्र का मर्म है प्रभुपाद जी ने हमको उनके ग्रंथों को दे दिया, और उसको अगर हम यहां जीवन में उतारते हैं तो हम प्रायोगिक रूप से परिवर्तन देख सकते हैं। हम देखें कैसे स्वाभाविक रूप से हमारी भक्ति भगवान की ओर और अग्रसर होगी, और स्वाभाविक रूप से हमें भगवान की ओर आकर्षण हो जाएगा, और फिर हम भी ये भक्ति रस है उसमें आनंद रसा आनंदी हो जाएगी, यही जीवन का अंतिम उद्देश्य। सारांश में मैंने कोई चर्चा की कि कैसे हम एनी क्वेश्चन तो हमने देखा कैसे है कि जो वैदिक शास्त्र है बड़े विशाल है, तो उसका सार प्रभुपाद जी ने उसका सार संक्षेप में प्रभुपाद जी ने हमको दिया है। तो श्रुति और स्मृति, स्मृति में से प्रभुपाद जी ने भगवद्गीता दिया है, और भगवद्गीता में अलग प्रकार के साध्य और अलग प्रकार के साधन बताए वैदिक शास्त्र में बताया, तो उसमें सर्वोच्च साधन और सर्वोच्च साध्य कृष्ण और भक्ति, ये प्रभु की एक भूमिका में स्पष्ट हो जाता है। और उपनिषद में निर्विशेष देवाकार ब्रह्म के बारे में वर्णन है और साथ साथ सविशेष्ट आकार भगवान के बारे में वर्णन है। तो वह कैसे है, वो ईश्वर द्वारा प्रभुपाद जी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो श्रुतियों में से, श्रुति मतलब ये कानून के कलम के समान है, कानून के नियम के समान है, और श्रुति मतलब कानून के पूर्व केस जो है उसके समान है। श्रुति में से, इतिहास में से प्रभुपाद जी ने हमको महाभारत से भगवद गीता दी। तो ये हमको बता रहे हैं कि आपकी क्या बीमारी है, तो डायग्नोसिस बता रहे हैं आपको क्या करना है। उपदेशामृत भक्तिसामृत ये क्या है, प्रेस्क्रिप्शन के समान है। आपको ठीक है, आपको क्या बीमारी है, अभी आप कैसे क्या ये दवाई ऐसे लो, ये दवाई ऐसे लो, तो फिर ऐसे भक्ति साम से भी बता रहे आपको ऐसे आपके परिक्रमा करनी चाहिए, ऐसे ऐसे चरणाम चाहिए, इस तरह से विग्रहों की आरती करनी चाहिए, डिटेल में बता रहे हैं। तो उपदेशामृत और भक्ति साम सिंधु हमें प्रायोगिक रूप से जीवन में अपनाने का मौका दिलाते हैं। देखा कि अगर ज्ञान है और उसको अमल नहीं कर रहे तो कैसे है, वो एक रेसिपी को याद करने के समान है, कुछ फायदा नहीं है, या प्रेस्क्रिप्शन को याद करने के समान है। तो हमें जीवन में उतारना है तो उसके लिए ज्ञान चाहिए। तो केवल सिर्फ इच्छा शक्ति से हम परिवर्तन नहीं कर सकते, जैसे तो बीमारी को हम इच्छा शक्ति से नहीं रोक सकते। ग्रंथ में हमने देखा कि वैदिक शास्त्र बड़े विशाल है पर वो जटिल भी है, जैसे कि जैकफ्रूट होता है, तो उसको बड़ा सरल बना के रूपा जी ने हमें दिया है, और उसको हमारे जीवन में उतारते हैं तो हम भक्ति रस का आस्वादन कर सकते हैं, और यह रस हमें सारे भौतिक वासनाओं से मुक्त करा देगा और दिव्य आनंद में स्थापित करा देगा। ऐसे क्यों बताया है कि प्राणियों की हत्या कर सकते हैं, प्राणियों को बलि चढ़ा सकते हैं? वास्तव में इंग्लिश में दो शब्द है, रिकमेंडेशन और कंसेशन। रिकमेंडेशन मतलब जो पुष्टि करना, और कंसेशन मतलब इजाजत देना, तो सिफारिश करना, रिकमेंडेशन सिफारिश करना, और कंसेशन मतलब इजाजत देना। तो मान लीजिए सूट देना, इजाजत देना, तो जैसे अगर कोई डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बोलता है आपको डायबिटीज हो गए, आपको आज से शक्कर के सारी चीजें बंद कर दो। शक्कर के बिना मैं जी नहीं सकता डॉक्टर, आप झूठ कैसे खाऊंगा क्या? तो ठीक है, आप हफ्ते में एक बार सूट दे सकते, तो और आप सुबह दोपहर शाम ये सब दवाई। तो अभी इनमें से दोनों में से कौन सी सिफारिश है, कौन सी इजाजत है? दवाई लेना ये सिफारिश है, और शक्कर खाना ये इजाजत है। वो डॉक्टर की इच्छा नहीं कि आप शक्कर खाओ, पर आपकी इच्छा है इसलिए आपको थोड़ी छूट दी जा रही है। तो उसी तरह से जो पूजा करना, तप करना, यज्ञ करना, ये शास्त्रों की सिफारिश है, और जो बाली बलि में जानवर चढ़ाना वो क्या है, छूट है। तो अगर मान लीजिए डॉक्टर के पास से कोई आता है और अपने परिवार में आके बोलता है, डॉक्टर ने बताया है कि मुझे स्वीट खाना है, डॉक्टर का आदेश है, तो डॉक्टर सही बोल रहे हो? नहीं, डॉक्टर ने बताया, वो डॉक्टर का आदेश नहीं था, वो डॉक्टर की छूट थी। तो क्या हो गया, यदि शास्त्रों में इस तरह से जो लोग आसक्त है मांस खाने के लिए, तो वो मांस छोड़ नहीं सकते, बोलो मांस छोड़ो, बोले भक्ति छोड़ दो, संभव नहीं हमारे लिए, तो उनके लिए छूट दी गई। पर दुर्भाग्यवश क्या हो गया कि ये छूट का गैर फायदा उठाएगा, और जो लोग हैं वो सिर्फ मांस काट के खा, मांस बलि को जानवर को मार के खाते हैं, और जो यज्ञ है, तप है, पूजा है, वो सब करते ही नहीं, वे बहुत कम करते। तो इसीलिए बुद्ध जी आए थे, भगवान बुद्ध आए थे, निंद सी यज्ञ विधे, ये सब यज्ञ छोड़ दो आप, अहिंसा पर धर्म स्वतंत्रता। तो वेदों में एक उद्देश्य के लिए बताया है, और वो छूट है, वो सिफारिश नहीं है, जैसे जहां पर हो गया हम छोड़ देना चाहिए। दूसरा सवाल
क्या
कैसे है, सवाल है इनका की महाभारत में भगवान ने शिव जी की पूजा करने को क्यों बताया अर्जुन? दो चीजें हैं इसमें कि देवी देवताओं की पूजा कोई पाप नहीं है, पाप पुण्य है, पाप नहीं है। देवी देवता की पूजा, देवी देवता की पूजा में कोई बलि वगैरह चढ़ाएगा तो पाप लग सकता है, बहुत अच्छी विधि से किया नहीं, पर देवी देवता के मंदिर में जाना बिल्कुल पाप नहीं है। और जो महाभारत और रामायण है ये ग्रंथ एक स्तर पे शुद्ध भक्ति सिखा रहे हैं और दूसरे स्तर पे कर्मकांड सिखा रहे हैं। कर्मकांड मतलब क्या? कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष। आप धर्म क्यों करो? ताकि आपको पैसा मिलेगा, अर्थ मिलेगा आपको। फिर अर्थ से क्या करना है? काम, इंद्र तृप्ति करनी है। उस बाद धर्म अर्थ काम से बहुत जन्मों के करने के बाद फिर कहीं मोक्ष की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। और रामायण महाभारत में ये बताया गया है कि अगर आप धर्म का पालन करोगे तो भौतिक दृष्टि से भी आपको फल मिलेगा, अर्थ और काम आपको प्राप्ति होगी। और इसीलिए जो अर्जुन है वो क्षत्रिय है, और क्षत्रिय वो एक राजा समस्त धनवान लोगों के लिए, साधारण लोगों के लिए वो एक आदर्श होता है। तो इसीलिए जो अर्जुन है वो स्वयं के जीवन में कृष्ण के भक्त है, उसके बारे में संदेह नहीं है। अगर आप पूरा महाभारत पढ़ेंगे तो उसे जब भी कोई बड़ी समस्या आती है वो कृष्ण का ही शरण लेते हैं। पर जब कोई ब्राह्मण या भगवान कृष्ण, जैसे जब युधिष्ठिर महाराज जंगल में गए तो उनके पास, उनके पीछे भी बहुत से ब्राह्मण लोग आ रहे थे, तो वो चिंता करने लगे कि मेरे पास अभी इन ब्राह्मणों का मैं पालन कैसे करूं, मेरे तो राज्य तो है नहीं, पालन कैसे करूं मैं। तो फिर उन्होंने धौम्य ऋषि से पूछा, धौम्य ऋषि ने बताया कि आप तो भगवान कृष्ण के महान भक्त हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप सूर्य जी की पूजा करो, और आप सूर्य की पूजा करोगे तो वह आपके लिए जरूर कोई विधान बना देंगे। और फिर उन्होंने अक्षय पात्र दे दिया। तो अगर किसी भक्त का आदेश है, भगवान का आदेश है, तो जनसाधारण के लिए उदाहरण रखने के लिए, जो जनसाधारण लोग परम पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने के लिए अभी तैयार नहीं है, तो उनके लिए क्या है? देवी देवताओं की पूजा है। तो इसीलिए देवी देवता की पूजा बताई गई है, और अर्जुन करते हैं, युधिष्ठिर करते हैं, पर उसमें कोई मोह नहीं है कि परम पुरुषोत्तम कौन है। जैसे भगवीता में के अंत में ही, अब भगवीता हो जाती है, युद्ध चालू होने वाला है, तो उसके पहले कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, अभी आप देवी की पूजा करो, देवी की शक्ति आपको मिल जाएगी तो फिर आप विजयी हो जाएंगे। तो देवी के फिर गुण है, गुणगान में सुंदर श्लोक बोलते हैं, सुंदर श्लोक बोल देते हैं, फिर देवी तुरंत पकड़ जाते हैं, और फिर अर्जुन बोलते मुझे आप आशीर्वाद दो ताकि मैं यशस्वी हो जाऊं। तो तुम्हारा यश तो जरूर आश्वस्त है अर्जुन, क्योंकि तुम्हारे साथ वासुदेव है।
क्या देवी ने बोलती मेरी कृपा से तुम यशस्वी हो गए,
तुम्हारे साथ कृष्ण है, तुमसे तुम्हारा यश अनिवार्य है। तो ये क्या है कि क्योंकि सब लोग शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं आ सकते हैं, तो इसीलिए जो देवी देवता की पूजा कर सकते हैं उनके लिए भी, उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनको एक उदाहरण को स्थापित करने के लिए वो बताया गया है। तो प्रभुपाल जी ने इस्कॉन में हमें देवी देवता पूजा को करने के लिए अनुमति नहीं दी, तो क्या है, महाभारत के समय कोई कन्फ्यूजन नहीं था कि परम पुरुषोत्तम कौन है, पर आज भारत में बहुत कन्फ्यूजन है। तो अगर हम हमारे मंदिर में अलग देव 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 लेके आएंगे तो लोग सोचेंगे कि यही सुप्रीम है, कौन परम पुरुषोत्तम है, कौन का, तो हम कन्फ्यूजन नहीं चाहते, तो इसीलिए हम देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं। पर इसका मतलब नहीं कि वो खंडन किया जा रहा है उसका, तो वह भी वैदिक संस्कृति का ही एक अंग है, और जो परम पुरुषोत्तम भगवान की पूजा नहीं कर सकते उनके लिए वो बताया गया है। तो आपका सवाल है की सबसे बड़ी छह पुराण है उनमें और श्रीमद् भागवत में क्या फर्क है? तो हमारे महान आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद वर्णन करते हैं कि कैसे ये छह जो पुराण है उनमें श्रीमद् भागवत सम्मिलित है, पर श्रीमद् भागवत ऐसे नहीं है, श्रीमद् भागवत 1900 पुराण है, 18 पुराणों में 6 पुराण सत्वगुण लोगों के लिए है, उनमें से श्रीमद् भागवत है। पर श्रीमद् भागवत की विशेषता क्या है कि वह स्पष्ट रूप से शुद्ध भक्ति और भगवान कृष्ण पे ज्योति डालता है, स्पष्ट रूप से कोई कंफ्यूजन नहीं है। विष्णु पुराण में विष्णु की महिमा है, कृष्ण की लीला है, प्रभु श्री रामचंद्र की लीला है, पर कभी कभी ऐसे श्लोक आ जाते हैं जिससे कि कभी कोई मोह में पड़ जाएंगे, विष्णु सर्वश्रेष्ठ है या शिवजी सर्वश्रेष्ठ है। वास्तव में अच्छी तरह से हम आचार्यों के मार्गदर्शन पड़ेगा तो मोह नहीं है पड़ेगा, पर मोह आ सकता है, पर भागवतम में ऐसा कोई मोह नहीं है। इसीलिए अगर आप भागवतम के चौथा और पांचवा अध्याय पढ़ते हैं, पहले स्कंध का नारद व्यास संवाद, इसमें नारद जी व्यास जी को बता रहे हैं कि वास्तव में आपने जुगुप्सित, आपने बड़ा बुरा कार्य किया है कि आपने सब ग्रंथ लिखे हैं और स्वभाव रक्तस्य, ये स्वभाव से लोग भोग करने लगे, वो भोग करते रहे। तो सत्वगुण सत्वगुणी पुराणों में है, वो सत्वगुणी ज्ञान दिया गया है, पर श्रीमद् भागवतम में है परम ज्ञान में, भगवधाम में अधिक जोर दिया, शुद्ध भक्ति का अधिक उदाहरण बताया और उच्च उदाहरण बताए। तो कई कहानियां समान है, पर जो कहानियों का जो स्तर है, मतलब कहानियों के द्वारा जो सिद्धांत स्थापित किया जाता है वो और ऊंचा है। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम को अमल पुराण बताया गया। तो इसमें मल क्या है, कर्म ज्ञान योग ये सब का मल है, देवी देवताओं की पूजा, कभी कभी उससे थोड़ा भ्रम हो सकता है, पर श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो कोई भ्रम नहीं हो सकता, इसीलिए उसको अमल पुराण बताया। Any other questions? थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की जय। भाव की गौर भक्तवृंद की गौर प्रेमान।
हरे कृष्णा। हम प्रभु जी को धन्यवाद देंगे, प्रभु जी ने हमें जो बेस्ट चीज है ये दो चीजों का स्तुति और स्मृति।